पृष्ठ 75 हिंदी नाटिका साहित्य अभाव के कारण। यद्यपि हिंदी को संस्कृत और प्राकृत की मूल्यवान पैतृक संपत्ति प्राप्त थी, तथापि इसका उपभोग 19वीं शताब्दी से पूर्व न हो सका। इसके कई पृष्ठ 76 कारण थे। हिंदी के प्रारंभिक साहित्य का उदय आपस की मारकाट और मुसलमानी आक्रमणों के क्षुब्ध वातावरण में हुआ था। इस समय देश में वह शांति न थी जो नाटकों के अभिनय और विकास के लिए अपेक्षित थी। नाट्य साहित्य की सृष्टि के लिए जीवन के प्रति आस्था और जातीय उत्साह अपेक्षित होता है। बहुत दिनों की दासता, अशांति और उत्पीड़न ने इस उत्साह को नष्ट कर दिया था। हमारे भाग्यवाद ने भी हमारे जीवन के प्रति आस्था को कम कर रखा था। अंग्रेजी राज्य के आगमन से जीवन की वास्तविकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ और उस काल की अपेक्षाकृत शांति ने अपनी समस्याओं की नाटकीय अभिव्यक्ति का अवसर दिया। मुसलमानों के यहाँ नाट्य साहित्य का बिल्कुल अभाव था। उनसे इनके बीच इनके संबंध में कोई उत्तेजना या प्रोत्साहन मिलना असंभव था। नाटकों में गद्य और पद्य दोनों ही रहते हैं, क्योंकि बोलचाल की स्वाभाविक भाषा गद्य ही है। संस्कृत नाटकों में गद्य पर्याप्त मात्रा में रहती थी, किंतु हिंदी भाषा के विकास में आरंभ काल में गद्य का कोई रूप प्रतिष्ठित न था। हिंदी और संस्कृत के नाटकों के बीच की कड़ी हमको बिहार के नाटकों में मिलती है। उदाहरण स्वरूप उमापति उपाध्याय का पारिजात हरण नाटक दिया जा सकता है। पूर्व हरिश्चंद्र युग। हिंदी में जो प्रारंभिक नाटक लिखे गए वे प्राय संस्कृत के अनुवाद थे और पद्यात्मक संवाद के रूप में थे। नेवाज कवि कृत शकुंतला नाटक तुलसीदास कृत के समकालीन प्रसिद्ध जैन कवि बनारसी दास जी का समय सार 3 तथा प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजवासी दास द्वारा किया हुआ अनुवाद ऐसे ही नाटक है, जो केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक नाम से अभिहित हुए हैं। पिछले नाटक का विषय आध्यात्मिक है और पात्र प्राय कल्पित या चित्त वृत्तियों के मानवीकरण है। इस श्रेणी के नाटकों में देव जी का देव माया प्रपंच नाटक, यद्यपि अब इसके प्रसिद्ध कवि देवकृत होने में संदेह किया जाता है, भी आएंगे। इन प्रारंभिक नाटकों की सूचि में महाराजा काशी राज की आज्ञा से बना हुआ प्रभावती तथा श्री महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, इन दो नाटकों के नाम और गिनाए जाते हैं। स्वनामधन्य श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम नाटक जिसमें पात्रों के प्रवेशादि के नियम का पालन हुआ है, अपने पिता श्री कविवर गिरधर दास वास्तविक नाम बाबू गोपाल चंद जी का बनाया हुआ नहुष नाटक बतलाया है। इसमें इंद्र को ब्रह्म हत्या लगने के कारण उनके पद च्युत होने तथा नहुष के इंद्र पद को प्राप्त होकर काम लोलुपतावश इंद्राणी को वरण करने की अभिलाषा से सप्तर्षियों को पालकी में जोतकर उनके यहाँ जाने की चेष्टा एवं दुर्वासा द्वारा शापित होकर उनके नहुष के पतन की कथा है। हिंदी का दूसरा नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक है। इसकी गद्य खड़ी बोली की है और इसका पद्य भाग ब्रज भाषा का है। यह पहले पहल पिनकांड साहब के संपादकत्व में छपा था। अनुवाद होते हुए भी इसमें मूल कासा पृष्ठ 77 आनंद आता है। इसकी भाषा में माधुरी की प्रशंसा भारतेंदु जी ने भी की है। इस प्रकार पूर्व हरिश्चंद्र काल के नाटकों का विषय प्राय आध्यात्मिक या पौराणिक रहा। ये नाटक प्राय संस्कृत के अनुवाद होते थे और इनकी भाषा अधिकांश में कम से कम पद्य भाग अवश्य ब्रज भाषा रही। भाषा के संबंध में इस परिपाटी का पालन भारतेंदु के समय तक होता रहा। भारतेंदु काल। वास्तविक अर्थ में हिंदी नाट्य साहित्य के जन्मदाता होने का श्रेय भारतेंदु जी को ही दिया जा सकता है। उन्होंने संवत 1925 में सबसे पहला अनुदित नाटक विद्या सुंदर लिखा। यह बंगाल से अनुवादित था और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाम का सबसे पहला मौलिक नाटक उन्होंने संवत 1930 में रचा। इस बीच में लाला श्रीनिवास दास का तप्ता संवरण निकला। इसको भारतेंदु बाबू ने हिंदी का चौथा नाटक कहा है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती के बाद अलीगढ़ के बाबू तोता राम जी का केटो कृतान निकाला। यह एडिसन द्वारा लिखे केटो नाम के अंग्रेजी नाटक से अनुवादित था। इस प्रकार नाटकों का ढर्रा चल पड़ा। भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर और वैदिक हिंसा हिंसा न भवती के अतिरिक्त और भी नाटक लिखे। प्रेम योगिनी, सत्य हरिश्चंद्र, संस्कृत के चंद्र कौशिक का कुछ हेर फेर का रूपांतर, मुद्रा राक्षस, यह विशाखादित्य के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। यह राजनैतिक नाटक है और इसका कथानक बड़ा पेचीदा है, फिर भी हिंदी में इसका बड़ा सुंदर निर्वाह हुआ है। विशस्य विष्मोषधम भाण नामक प्राचीन ढंग का एक रूपक है, जिसमें एक ही पात्र आकाश की ओर मुंह उठाकर आकाश भाषक के रूप में वार्तालाप करता है। इसका विषय आधुनिक है। इसमें महाराजा बड़ौदा के अत्याचार के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके पदच्युत किए जाने पर संतोष प्रकट किया गया है। चंद्रावली कृष्ण भक्ति प्रधान एक नाटिका है। इसमें काव्यत्व की मात्रा अधिक है। संचारियों और वीरा दशाओं के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। इसकी भाषा अधिकांश में ब्रज भाषा है। भारत दुर्दशा इसमें भारत की दयनीय दशा और उसके कारणों का चित्रण है। नील देवी इसमें एक भारतीय नारी के वीरत्व और कार्य कौशल का वर्णन है। अंधेर नगरी न्याय की विडम्बना संबंधी एक प्रहसन आदि 14 नाटक हैं। भारतेंदु जी के समकालीन लेखकों ने नाटकों में भी श्री बद्री नारायण प्रेमधन लिखित भारत सौभाग्य नाटक, प्रताप नारायण मिश्र का त्रिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार, हमीर जिनके संबंध में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है, श्री राधा कृष्ण दास के महारानी पद्मावती तथा महाराणा प्रताप, श्री केशव राम भट्ट के सज्जाद संबुल और समसाद सौसन आदि नाटक उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त लाला श्री निवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण, श्री किशोरी लाल गोस्वामी कृत प्रणयिनी प्रणय और मयंक मंजरी, श्री शालीग्राम का माधवानंद काम कंदला पृष्ठ 78 नाटक भी विशेष रूप से ख्याति पा चुके हैं। उस समय से ही दुखांत नाटकों की प्रवृत्ति का श्री गणेश हो चुका था। रणधीर प्रेम मोहिनी दुखांत नाटक ही है। पिछले दो नाटकों की भाषा यद्यपि उर्दू थी, तथापि इनमें तत्कालीन जीवन से अधिक संपर्क था। इनमें राजनैतिक पुट भी था। ये दोनों ही बंगाल नाटकों के आधार पर लिखे गए हैं। इसमें सभी प्रकार के पात्र आए हैं। इस प्रकार के नाटकों में प्राचीन परिपाटी का कुछ कुछ त्याग होने लगा था। भारतेंदु जी प्राचीन प्रथा से हटे अवश्य, किंतु अधिक नहीं। उनके बहुत से नाटकों में मंगलाचरण और भरत वाक्य मिलते हैं और उनका विषय धार्मिक से हटकर सामाजिक और राजनीतिक की ओर जाने लगा। ऐतिहासिक नाटकों में भी जातीय गौरव की प्रधानता होने के कारण वे राजनीति की कोटि में आ सकते हैं। इस समय के नाटकों में हास्य व्यंग्य का भी समावेश होने लगा और कहीं कहीं एक ही नाटक में मनोरंजन के लिए हास्य प्रधान कथानक को भी स्थान दिया जाता था। भाषा भी ब्रजभाषा से हटकर खड़ी बोली की ओर आने लगी और उर्दू के शब्दों का भी समावेश होना आरंभ हो गया। संक्रांति युग संस्कृत और बंगला के नाटकों का अनुवाद तो हरिश्चंद्र युग में ही आरंभ हो गया था, किंतु संक्रांति काल में वह कुछ तेजी से बढ़ा। भारतेंदु जी ने अपने समय के अधिकारी व्यक्तियों द्वारा किए हुए संस्कृत के नाटकों के अनुवाद की बड़ी हंसी उड़ाई है। नाट्य करने का अर्थ होता है अभिनय करना। उन लोगों ने नाट्य का अर्थ नाचना लगाया था। इस कारण भी कहीं कहीं हास्यास्पद बन गए। भारतेंदु जी लिखते हैं, एक आनंद और सुनिए। नाटकों में कहीं कहीं आता है नाट्य नोप विषय, अर्थात बैठने का नाट्य, अर्थात अभिनय करता है। उसका अनुवाद हुआ राजा नाचता हुआ बैठता है। नाट्य नो लिख्य की दुर्दशा हुई है, ऐसी ही लेखनी को लेकर नाचती हुई निकट बैठकर नाचती हुई। इस संक्रांति काल के अनुवाद इस प्रकार के न थे। संस्कृत के नाटकों में राय बहादुर लाल सीताराम भूपकृत अनुवाद बड़े सफल हुए। श्री सत्यनारायण जी का भवभूति का उत्तर रामचरित मूल लेखक के भाव निर्वाह और भाषा सौष्ठव की दृष्टि से उतना ही उत्कृष्ट है जितना राजा लक्ष्मण जी का शकुंतला नाटक का अनुवाद हाल में भासिक कई नाटकों के स्वप्नवास दत्ता प्रतिमा आदि के सुंदर अनुवाद भी निकले। इन्हीं दिनों शेक्सपियर के नाटकों का भी हिंदी अनुवाद हुआ। बंगला के अनुदित नाटकों में द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों के अनुवादों की कुछ दिन बड़ी धूम रही। रवि बाबू के डाकघर, चित्रांगदा, राजा रानी, चीर कुमार सभा आदि के भी सुंदर अनुवाद निकल चुके हैं। इन अनुवादों का श्रेय पंडित रूप नारायण पांडे को है। इन नाटकों द्वारा हिंदी नाटकों में गद्य का प्रचार बढ़ा। इस काल में कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गए, उनमें से तो कुछ तो साहित्यिक कहे जा सकते हैं और कुछ विशेष रूप से फारसी नाटक कंपनियों के साथ समझौते की दृष्टि से लिखे गए थे। साहित्यिक नाटकों में मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मिलन, इसमें मुकदमेबाजी के मार्मिक दृश्य दिखाए गए हैं। पंडित बद्री नारायण भट्ट के दुर्गावती, चंद्रगुप्त तथा वेणुचरित, राय देवी प्रसाद पूर्ण का चंद्रकला, भानु कुमार, बाबू मैथिलीशरण गुप्त का चंद्रहास, पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी का मधुर मिलन, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध आदि नाटक प्रमुख है। इन नाटकों में भी कम से कम कुछ में तो अवश्य फारसी नाटकों की सी पद की प्रवृत्ति है। जरा सी बात की जैसे आप किस पर नजर नाराज हैं। भट्ट जी के दुर्गावती नाटक में लंबी चौड़ी पद्य मई अभिव्यक्ति की गई है। देखिए, क्रुद्ध हुए हैं भला आज यूं किस अत्याचारी पर आप, कौन मिटने वाला है खुद मिटकर दुनिया का संताप, भला कौन से पापी का अब घड़ा फूटने वाला है, कौन शख्स है जिसका यम से पाला पड़ने वाला है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी चतुर्वेदी के कृष्णार्जुन युद्ध में भी अनावश्यक पद्य प्रयोग की प्रवृत्ति है, किंतु उन पद्यांशों में साहित्यिकता कुछ अधिक होने के कारण वैषम्य सा हो जाता है। जहाँ थोड़ा भावावेश हो वहाँ पद्य इतना नहीं खटकता जितना कि अनावश्यक प्रसंगों से। वृंदा तुझमें भरा हुआ है मेरे बालकपन का रंग, लाड यशोदा मैया का व भैया बलदाऊ का संग, ग्वाल बाल की सुखद मंडली, गौवे यमुना और निकुंज, राधा सह सखियों का आना, चंद्र साथ ज्यों तारक पुंज, कृष्णार्जुन गीत। पहले छंद की अपेक्षा इसमें अधिक मार्मिकता और प्रसंगानुकूलता है। इसमें भी प्रवृत्ति तो वही है किंतु कुछ परिमार्जित रूप में। रंगमंच की दृष्टि से लिखे हुए नाटकों में नारायण प्रसाद बेताब जी का महाभारत, पंडित राधेश्याम कथावाचक के पौराणिक नाटक वीर अभिमन्यु, परम भक्त प्रहलाद तथा हरे कृष्ण जौहर की पति भक्ति आदि नाटक जो पारसी नाटक कंपनियों में खेले जाने योग्य हिंदी भाषा प्रधान नाटक थे, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कृष्णचंद जेवा के जख्मी पंजाब, जख्मी हिंदू, शहीद सन्यासी ने विशेष ख्याति पाई, किंतु उनमें उर्दू का प्राधान्य था। इस समय के साहित्यिक नाटकों में पद्य से छुटकारा तो नहीं मिला किंतु गद्य की ओर प्रवृत्ति बढ़ी, उसका अपेक्षाकृत प्राधान्य हो गया। विषयों में भी परिवर्तन हुआ, धार्मिक विषयों का बाहुल्य रहा किंतु दैवीय या अति मानवीय शक्तियों का हस्तक्षेप कम हो गया। धीरे धीरे इस काल में समाज की रुचि धार्मिक विषयों से हटकर ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों की ओर अग्रसर होने लगी और पृष्ठ 80 यथार्थवाद की ओर भी कुछ कुछ झुकाव बढ़ा। प्रसाद युग। प्रसाद जी स्वयं एक युग थे, उन्होंने हिंदी नाटकों में मौलिक क्रांति की। उनके नाटकों को पढ़कर लोग द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों को भूल गए। वर्तमान जगत के संघर्ष और कोलाहल में जीवन से उबा हुआ उनका हृदयस्थ कवि उनको स्वर्णिम आभा के दीप्त दूरस्थ अतीत की ओर ले गया। उन्होंने अतीत के इतिवृत्त में भावना का मधु और दार्शनिकता की रसायन घोलकर समाज को एक ऐसा पौष्टिक अवहेल दिया जो राज की मनोवृत्ति को दूर कर उसमें एक नई सांस्कृतिक चेतना का संचार कर सके। उनके नाटकों में द्विजेंद्र लाल राय की सी ऐतिहासिकता और रवि बाबू की सी दार्शनिकता पूर्ण भावुकता के दर्शन होते हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारत के शक्ति वैभव की अपेक्षा उनकी नैतिक संपन्नता और विशालता को अधिक उभार में लाकर देशवासियों का मस्तक गौरव के गौरव से ऊंचा कर दिया। मानव वीरों के हाथों में आए हुए विश्व विजेता सिकंदर को सिंहरण द्वारा अभयदान दिलाकर परमेश्वर का ऋण ही नहीं चुकाया वरन एक नैतिक प्रतिशोध भी ले लिया और भारतीय उदारता का परिचय दिया। प्रसाद जी इतिहास और पुरातत्व के पांडित्य थे। उन्होंने बौद्धकालीन भारत का विशेष अध्ययन किया था और इसी कारण वे तत्कालीन वातावरण राजकीय शिष्टता और शासन व्यवस्था के चित्र में विशेष रूप से समर्थ हुए हैं। महाबलाधिकृत परम भट्टाकर अश्वमेध पराक्रम दंड नायक न्यायाधिकरण दैवारिक महास्थवेर विषयपति महाश्रमण महासंधि विग्राहक कंधावार नासिर गरुड़ ध्वज आदि शब्द इस काल में भी प्राचीन सभ्यता को सजीव बना देते हैं। प्रसाद जी ने वातावरण की ही सृष्टि नहीं की वरन उनको सार्थकता प्रदान करने वाले सजीव और सबल था कोमल और संगीतमय स्त्री पात्रों की भी सृष्टि की है जो अपनी ममता की दृढ़ता और त्याग के तेज में सबलों की आभा को फीकी कर देते हैं। उनके स्त्री पात्रों में अलका कल्याणी देवसेना आदि चीर स्मरणीय रहेगी। प्रसाद जी के नाटकों में बाह्य संघर्ष के साथ अंतर्द्वंद्व के भी सुंदर उदाहरण मिलते हैं। विचार सामग्री और जीवन मीमांसा की दृष्टि से भी प्रसाद जी के नाटक बड़े संपन्न है। अध्यात्म में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का बड़ा सुंदर समन्वय किया गया है। धातु सेन के मुख से प्रसाद जी कहलाते हैं। अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। उपनिषदों के नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। स्कंदगुप्त चतुर्थ प्राचीन वातावरण के भीतर ही प्रसाद जी ने प्रांतीयता और सांप्रदायिकता के ऊपर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। देखिए मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। चंद्रगुप्त एक है। पृष्ठ 81। परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। चंद्रगुप्त अंक ए। प्रसाद जी के नाटक के सभी नाटकों में कर्मण्यता और दार्शनिक त्याग तथा सुख दुख के समन्वय और मधुर मिलन की भावना सूत्रात्मा की भांति ओतप्रोत है। जीवन के मुस्कान में छिपी हुई अश्रुमाला से प्रसाद जी विचलित नहीं होते। जीवन में मृत्यु बसी है जैसे बिजली हो घर में। मृत्यु उनके नाटकों में आती है जैसे अजात शत्रु में, किंतु सुख शांति पूर्ण आदर्शों की पूर्ति के रूप में प्रसाद जी अपने सभी पात्रों के कंठ में बैठकर नियतिवाद का प्रचार भी करते हैं। उनके पात्रों में दार्शनिकता एक दोष की सीमा तक पहुंच गई है। प्रसाद जी की भाषा यद्यपि एक रस ही रही है तथापि कोमल प्रसंगों में वह गीतिमय हो गई है और अपना सौंदर्य सौरभ विकीर्ण करती हुई दिखाई देती है। उनके नाटकों में दार्शनिक निर्ममता के साथ कुसुम कमनीय कोमलता के भी दर्शन होते हैं जो प्रायः गीत लहरी में प्रस्फुटित होती है। कर्मठ एवं नृशंस चाणक्य के हृदय में बाल्य स्मृति के रूप में सुवासिनी के प्रति एक कोमल स्थान है जो उसको मानवता के क्षेत्र से बाहर होने से बचा लेता है। प्रसादोत्तर काल। प्रसाद जी के नाटक कुछ अधिक बड़े होते थे इसलिए उनके अभिनय में विशेष काट छाट की आवश्यकता रहती है। नवीन नाटकों की प्रवृत्ति छोटे नाटकों की ओर हो चली है जो सिनेमा की भांति लगभग 2.5 घंटे में समाप्त हो जाते हैं। आधुनिक नाटकों में 3 अंक की प्रवृत्ति आवश्यक रूप से तो नहीं किंतु पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हो गई है। इसके अतिरिक्त इन नाटकों में भूत की अपेक्षा वर्तमान को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि उसके लिए कल्पना पर कम बल देना पड़ता है, किंतु प्राचीन सभ्यता विषयक नाटकों में मनोवैज्ञानिक दूरी के कारण जो भव्यता आती है उसमें कुछ कमी अवश्य हो जाती है। आजकल जो पौराणिक नाटक भी लिखे जाते हैं उनको बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण ऐसा रूप दिया जाता है जो तर्क संगत हो। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का नल दमयंती नाटक इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है। उसमें हंस को एक सौदागर वर्तमान नाटकों के लिए कुलीनता और लोक प्रसिद्ध आवश्यक नहीं रही और इसका झुकाव वस्तुवाद की ओर हो जाता है। इसी कारण पाश्चात्य नाटकों के से विस्तृत रंगमंच के संकेतों का चलन हो गया है। इन नाटकों में सामाजिक और वैयक्तिक समस्याओं पर अधिक बल दिया जाता है। ये सब प्रवृत्तियां अधिकांश में इब्सन, गल्सवर्दी, बर्नार्ड शॉ आदि पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव का फल है। आधुनिक नाटककारों में सर्वश्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, कैलाश नाथ भटनागर, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, पृथ्वीराज शर्मा आदि प्रमुख है। श्री वृंदावन लाल वर्मा ने भी नाटक के क्षेत्र में प्रवेश किया है। प्रश्न 82। प्रसादोत्तर काल में समस्यात्मक नाटकों को अधिक महत्व मिला। इनका संबंध वर्तमान समाज में व्यक्ति और उसके वातावरण से चलने वाले संघर्ष से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से होता है। इन समस्याओं को ऐसे प्रभावशाली रूप से रखा जाता है जिससे पाठकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। बर्नार्ड शॉ का कथन है कि नाटक प्रकृति का छाया चित्रण मात्र नहीं है, उसका कार्य है एक समस्या का उपस्थित करना। शॉ के निम्नोद्धृत वाक्य इस संबंध में पठनीय है। इट विल बी सीन दैट ओनली इन द प्रॉब्लम प्ले इज देयर एनी रियल ड्रीम बिकॉज ड्रीम drama is no mere setting up of camera to nature. It is the presentation in parable of the conflict between man's will and his environment in a world of problem. Shri Vishwanath ki हिंदी नाटकों का विकास नाम की पुस्तक से उद्धृत पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र पर इब्सन और बर्नार्ड शॉ का अधिक प्रभाव है। उनके नाटक समस्यात्मक होते हैं और उनमें बुद्धि भाव के साथ पर्याप्त रोमांस भी रहता है। सन्यासी राक्षस का मंदिर और मुक्ति के रहस्य में उन्मुक्त प्रेम की ओर झुकाव है। वास्तविक प्रेम को नैराश्य का सामना करना पड़ता है, यह बात सन्यासी में तो स्पष्ट रूप से सामने आती है। इन नाटकों के विपरीत सिंदूर की होली में मानसिक वरणचीर काल के लिए नायिका की को वैवाहिक बंधन में बांध देता है और नायक का मरण नायिका को वैधव्य के शोक सागर में निमग्न कर देता है। मिश्र जी ने गरुड़ ध्वज नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखा है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के वरमाला नामक नाटक का कथानक मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। उसमें मूक अभिनय को भी स्थान दिया गया है। राजमुकुट उनका ऐतिहासिक नाटक है। उनके नाटकों में सुपाठी होने के साथ अभिनय योग्य होने का भी गुण है। हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन और मिलिंद जी के प्रताप प्रतिज्ञा नाटक ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। ये नाटक भी ऐतिहासिक है किंतु इसमें इतिवृत्त मुगलकालीन भारत है। ये रचनाएं जनता की रुचि के अधिक अनुकूल है किंतु इनमें प्रसाद का सा गंभीर और उनकी सी दार्शनिकता नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रक्षाबंधन पठनीय है। स्वप्न भंग भी इन्हीं नाटकों की कोटि में आता है। उसका भी इतिवृत्त मुगलकालीन है और उसमें हिंदुत्व की ओर झुके हुए धारा के प्रति सहानुभूति प्रकट करने प्रयत्न है। ऐतिहासिक नाटक लिखने में श्री प्रेमी जी ने विशेष प्रसिद्ध प्राप्ति की है। उन्होंने शिवा साधना, प्रतिशोध, उद्धार आदि और भी कई ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। सुदर्शन जी का भाग्य चक्र कई कॉलेजों में सफलता के साथ खेला गया है। यह एक सामाजिक नाटक है। इसमें समाज के मान्य और प्रतिष्ठित लोगों की विधुरता का उद्घाटन किया गया है। पंडित उदय शंकर भट्ट का कमला भी इसी प्रकार 83 का नाटक है। ऐसे नाटक जनता की रुचि के अनुकूल होते हैं। समाज में जिन लोगों से जैसे रईसों, जमींदार और पूंजीपतियों से हम बदला नहीं ले सकते, उनकी धूर्तता का उद्घाटन करते हुए देखकर हमको प्रसन्नता होती है। इनमें साहित्यिकता की अपेक्षा लोक रुचि की साधना अधिक दिखाई देती है। इसके पक्ष में यह अवश्य कहा जाएगा कि यह रुचि कुत्सित रुचि नहीं है और इसमें एक प्रकार का आदर्शवाद है जो बुराई की हार और उदारता की विजय देखना चाहता है। पंडित उदय शंकर भट्ट ने मत्स्य, गंधा, विक्रमादित्य आदि गीति नाट्य भी लिखे हैं। उनका दाहर एक ऐतिहासिक नाटक है, उसमें खलीफा द्वारा सिंध विजय का हाल है। भट्ट जी के अम्बा और सगर विजय नाटक पौराणिक आख्यानों पर आश्रित है। उनकी अम्बा में वर्तमान नारी का गौरव मुखरित हो उठा है। हाल ही में उन्होंने शक विजय नामक एक और ऐतिहासिक नाटक लिखा है। उनका कुमार संभव नाटक बड़ा कलापूर्ण है। उसमें कला और आचार की समस्याएं भट्ट जी ने सरस्वती द्वारा कला की ही के ही पक्ष में का समर्थन कराया है। सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक और वर्तमान युगीन समस्यात्मक दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। कर्तव्य में राम और कृष्ण के चरित्र को मिलाने का प्रयत्न किया है, किंतु वास्तव में ये नाटक के दो अंग से हो गए हैं। उनके स्पर्धा नाम के नाटक में नारियों के पुरुषों से अनुचित स्पर्धा की समस्या उपस्थित की गई है। नए नाटकीय प्रयोग करने में सेठ जी बड़े कुशल हैं। उनके नाटकों में जैसे प्रकाश में चीनी की दुकान में साठ का प्रतीकवाद भी है। प्रकाश स्वयं चीनी की दुकान का सांड है। उनके चतुष्पथ में एक एक पात्र के एक पक्षी वार्तालाप है। प्राचीन काल में भाड़ भी एक पात्री नाटक होता था। नवरस में रसों को ही जैसे वीर सिंह, रुद्र सेन, ग्लानी दत्त आदि पात्र बनाया है। आजकल सभी प्रकार के नाटक लिखे जा रहे हैं। उनमें सामाजिक, पौराणिक और राजनीतिक मुख्य हैं। कुछ भाव नाट्य और गीत नाट्य भी लिखे जा रहे हैं। एकांकी नाटक हिंदी में आजकल एकांकी का प्रचलन अधिक बढ़ रहा है। इसके दो कारण हैं। इस समय की बचत और दूसरा अभिनय की अपेक्षाकृत सुलभता। जो संबंध उपन्यास का छोटी कहानी से है, वही नाटक और एकांकी का है। वह भी कहानी की भांति जीवन की एक झलक है। इसके संबंध में एक बड़ी समस्या यह है कि चरित्र चित्रण की इसमें कम गुंजाइश रहती है और बने बनाए चरित्रों पर ही प्रकाश डाला जाता है। इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के 18 जुलाई की शाम तथा रेशमी टाई में चरित्र परिवर्तन बड़े सुंदर ढंग से हुआ है। हिंदी एकांकीकारों में सर्वश्री राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, सुदर्शन उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, गणेश प्रसाद द्विवेदी तथा भगवती चरण वर्मा आदि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। रेडियो नाटक लिखने पृष्ठ 84 निधि, उदय शंकर भट्ट, श्री विष्णु प्रभाकर, श्री भारत भूषण अग्रवाल और श्री उपेंद्र नाथ अश्क विशेष रूप से प्रख्याति प्राप्त कर चुके हैं। संदर्भ एक, शिपली लिखित द क्विस्ट फॉर लिटरेचर पृष्ठ 199 से उद्धृत। दो, भरत मुनि ने भी बहुत से कार्यों को एक अंक में लाने का निषेध नहीं किया है, किंतु उनमें अवरोध रखना बतलाया है। यह कार्य की एकता ही है। एकांकी कदाचित बहुनी कार्याणी योज ये धीमान आवश्यक का विरोधेन तत्र काव्यानी कार्याणी नाट्यशास्त्र। तीन, यह एक आध्यात्मिक पद्य रचना है। इसमें जीव पुद्गल जैन साहित्य व भौतिकी पदार्थ को कहते हैं का नाटक संबंधी रूपक बाधा है। स्वयं यह नाटक नहीं है। समाप्त।